तो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सब? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं हमारे इस प्यारे से प्रोग्राम में जिसका नाम है सुनो कहानी। हमारे इस प्रोग्राम का नाम है और हम अपने इस प्रोग्राम में क्या करेंगे,
कहानी सुनेंगे।
एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनते हैं, एक कहानी सुनते हैं। अब कहानी भी सुनेंगे लेकिन उससे पहले हम अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत सुनते हैं। चलें आज आप में से कोई दुरूद पाक की फजीलत सुनाए, कोई सुनाएगा? जी आप सुनाए।
हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक दफा दुरूद पाक पढ़ेगा अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें भेजेगा।
सुभान अल्लाह।
10 दरजात बुलंद फरमाएगा।
सुभान अल्लाह।
और 10 गुनाह मिटाएगा।
सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों कितनी प्यारी फजीलत है कि जो शख्स सिर्फ एक बार दुरूद पाक पढ़ेगा, कितनी बार?
एक बार
दुरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें भी भेजेगा, उसके 10 दरजात भी बुलंद फरमाएगा और उसके 10 गुनाह भी माफ फरमाएगा। तो एक दुरूद पाक पढ़ने पर इतनी सारी बरकतें, इतनी सारी फजीलतें मिल रही हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। ठीक है
जी।
तो पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों हमने दुरूद पाक की फजीलत सुन ली। अब कहानी सुनने से पहले आप सब हमारे किड्स मदनी चैनल के नाजरीन को अपना तारुफ पेश कीजिए। जी आप अपना नाम बताइए।
मेरा नाम मोहम्मद हिलाल अज़ा है।
आप अपना नाम बताइए।
मेरा नाम मोहम्मद उसैद रजा अत्तारी है।
उसैद रजा अत्तारी, बड़ा ही अच्छा नाम है। अब आप अपना नाम बताइए।
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाम आपका?
मेरा नाम अहमद मुश्तबा है।
अहमद मुश्तबा, बड़ा ही अच्छा नाम है। अहमद मुश्तबा भाई आप हमारे किड्स मदनी चैनल के नाजरीन को मदनी मकसद सुनाइए।
मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल।
अब चलें सारे बच्चे मिलकर मदनी मकसद सुनाएं। हमारा मदनी मकसद क्या है?
मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह।
अच्छा प्यारे बच्चों हमारा जो मदनी मकसद है उसमें ये नहीं है इस्लाम की कोशिश करनी है, मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। किसकी कोशिश करनी है? इस्लाह की कोशिश करनी है। आप दोबारा से सारे सुनाएं, हमारा मदनी मकसद क्या है?
मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल।
माशाअल्लाह, अल्लाह पाक हम सबको हमारे इस प्यारे मदनी मकसद में कामयाबी अता फरमाए। जी आप अपना नाम बताइए।
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
मेरा नाम मोहम्मद मुर्तजा है।
मोहम्मद मुर्तजा भाई माशाल्लाह। जी आप अपना नाम बताइए।
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
मेरा नाम मोहम्मद दानियल है।
क्या नाम है?
मेरा नाम मोहम्मद दानियल है।
मोहम्मद दानियल भाई, हमारे दानियल भाई आप कितने साल के हैं, कितनी उम्र है आपकी?
7 ईयर्स।
7 ईयर्स, 7 साल के हैं माशाल्लाह। जी आपका क्या नाम है?
मोहम्मद अयान।
मोहम्मद अयान माशाल्लाह, बड़े ही अच्छे नाम है सबके। अल्लाह पाक आप सबको इन प्यारे प्यारे नामों की बरकतें अता फरमाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सब बच्चों का तारुफ भी हो चुका, अब आपने कहीं नहीं जाना, अपनी स्क्रीन ऑन रखनी है और हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल रहना है। तो बच्चों कहानी शुरू करें
जी।
तो प्यारे बच्चों आज हम जो स्टोरी सुनने वाले हैं, जो कहानी सुनने वाले हैं, वो एक बादशाह के बारे में है। किसके बारे में है? किसके बारे में है?
बादशाह
के बारे में वो स्टोरी है। बादशाह को इंग्लिश में क्या कहते हैं?
किंग।
क्या कहते हैं?
किंग।
सब मिलकर बताएं।
किंग।
बादशाह को इंग्लिश में किंग कहते हैं, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। अच्छा प्यारे बच्चों जिस बादशाह की आज हम स्टोरी सुनने वाले हैं ना, वो बादशाह बड़ा ही जालिम और बड़ा ही मगरूर था। क्या था?
जालिम और
मगरूर बादशाह था। प्यारे बच्चों غرور کرنے والا جسے مغرور کہتے ہیں، اسے انگلش میں کہتے ہیں ایروگینٹ. کیا کہتے ہیں؟
ایروگینٹ،
یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، اپنے مال، اپنی دولت یا اپنے علم کی وجہ سے، اپنی شہرت کی وجہ سے دوسروں کو کم سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ سب جو ہے وہ غرور میں آتا ہے. ایسے شخص کو کیا کہتے ہیں؟
مغرور.
کیا کہتے ہیں؟
مغرور.
مغرور کہتے ہیں، اور ایسے شخص کو انگلش میں کہتے ہیں ایروگینٹ. تو وہ جو بادشاہ تھا وہ بڑا ہی ظالم، بڑا ہی مغرور تھا. اب کیا ہوا، اس نے جو ہے وہ اپنے ملک میں ایک بڑا ہی عالیشان محل تعمیر کروایا، اور اس محل میں اس نے کافی مال، کافی پیسہ اس نے خرچ کیا. ظاہر سی بات ہے کہ ایک عام انسان بھی چاہتا ہے کہ بھائی وہ اچھے سے اچھے گھر میں رہے، اچھا سے اچھا اس کے رہنے کا مکان ہو. تو وہ تو بادشاہ تھا، اس نے اپنے اسٹیٹس کے لحاظ سے، اپنے مرتبے کے لحاظ سے بڑا ہی اچھا محل جو ہے وہ تعمیر کروایا، کافی مال، کافی پیسہ اس میں خرچ کر دیا. جب وہ محل تعمیر ہو گیا، اس کی بناوٹ مکمل ہو گئی، تو اس بادشاہ نے ارادہ کیا کہ اس محل کا وزٹ کیا جائے. کیا کیا جائے؟ وزٹ کیا جائے، یعنی اس محل کو دیکھا جائے کہ جیسا میں چاہتا تھا وہ ویسا بنا ہے یا نہیں. ظاہر سی بات ہے، اتنا پیسہ میں نے لگایا ہے، اتنا مال میں نے خرچ کیا ہے، تو میری خواہش کے مطابق میرا محل بنا کے نہیں. تو اب اس بادشاہ نے کیا کیا، وہ بادشاہ جو ہے سب سے پہلے اس محل میں گیا اور اس کے اندرونی حصوں کو دیکھنے لگا. اس محل کے جو اندرونی مقامات تھے انہیں دیکھنے لگا، وہاں کے کمرے، وہاں کا اس کا دربار، وہاں کا کچن وغیرہ، سارے جو ہے اس نے مکانات، اندر کے مقامات اس نے دیکھے. پھر اس کے بعد وہ بادشاہ جو ہے اس محل کے باہر چکر لگانے لگا، اس محل کے باہر کے جو جگہیں تھیں انہیں دیکھنے لگا. تو چکر لگاتے 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 وہ ایک جگہ پر پہنچا اور رک گیا. کیا کیا اس نے؟ ایک جگہ پہنچ کر وہ رک گیا. وہاں پر اس نے جو ہے وہ اپنے محل کے قریب ایک جھونپڑی دیکھی. کیا دیکھی؟ جھونپڑی دیکھی. تو اسے بڑا غصہ آیا کہ میرے محل کے قریب کس نے جھونپڑی بنا دی ہے. تو لوگوں سے اس نے پوچھا کہ یہ جھونپڑی کس کی ہے. تو لوگوں نے بتایا کہ یہ ایک مسلمان بوڑھی عورت کی ہے. کس کی ہے؟ جی، مسلمان بوڑھی عورت کی ہے، اور وہ یہاں پر اللہ پاک کی عبادت کرتی ہے، یعنی ایک نیک مسلمان عورت ہے جو اللہ پاک کی عبادت کرتی ہے، اور وہ بیچاری تھی اکیلی عورت. تو جب بادشاہ نے دیکھا نا کہ کسی ایک بوڑھی عورت نے میرے محل کے سامنے اپنی یہ جھونپڑی بنا دی ہے، تو اسے بڑا غصہ آیا کہ میرے محل کے سامنے اس نے اپنی جھونپڑی بنا دی، اس سے تو میری محل کی خوبصورتی میں کمی آ جائے گی، اس سے تو میرے محل کی زینت کم ہو جائے گی. تو اسے اس بات پر بڑا غصہ آیا. جیسا کہ ہمارے یہاں پر بھی بعض بچے ہوتے ہیں جو دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں. کیا کرتے ہیں وہ کہ اسکول میں ان کے ساتھ کوئی بچہ آ کر بیٹھ جائے تو وہ کیا کرتے ہیں، یار تیرا تو یونیفارم بھی پرانا ہے، تیرا تو ڈریس بھی پرانا ہے، تیرا تو بیگ بھی پھٹا ہوا ہے، تیری اوقات کیا ہے کہ تو میرے برابر میں آ کر بیٹھا ہے، جا تو پیچھے جا کر بیٹھ، میرے برابر میں مت بیٹھ. اسی طرح کوئی ذہین بچہ ہوتا ہے تو دوسرے بچوں کو جو ہے وہ حقیر سمجھتا ہے کہ تجھے تو پڑھنا بھی نہیں آتا، تجھے تو اے بی سی بھی نہیں آتی، تو میرے برابر میں آ کر بیٹھا ہے، جا تو پیچھے جا کر بیٹھ، یہاں پر ہم پڑھنے والے بچے بیٹھتے ہیں. تو دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، انہیں لفٹ بھی نہیں کراتے، انہیں رسپانس بھی نہیں دیتے، نہ ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، نہ ان سے کوئی بات کرتے ہیں. تو اس سے ان کی دل آزاری بھی ہوتی ہے. ہوتی ہے نا بچوں؟ پیارے بچوں، کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سب کے ساتھ یکساں تعلقات رکھنے چاہیے، سب کے ساتھ ایکول ریلیشن رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ کیوں کسی کو ہم چھوٹا سمجھیں گے، کسی کو حقیر سمجھیں گے، تو کیا ہوگا کہ اس سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟
ناراض.
اور ہمیں کون سے کام کرنے چاہیے جس سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے؟ کون سے کام کرنے چاہیے؟ جن سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے. جی،
حقیر کے کیا معنی؟
حقیر کے کیا معنی، کوئی بتا سکتا ہے حقیر کسے کہتے ہیں؟ جی آپ بتائیں.
غریب کو.
غریب کو حقیر کہتے ہیں. اور کوئی بتائے گا؟ پیارے بچوں، حقیر کا مطلب ہوتا ہے کم تر، چھوٹا. کسی کو حقیر سمجھنا یعنی اس کو چھوٹا سمجھنا، اس کو کم تر سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا اور اس کو چھوٹا سمجھنا. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟
جی.
تو اب ہماری اسٹوری کہاں پہنچی تھی، کون بتائے گا؟ کیا سن رہے تھے ہم؟ باقی کسی کو نہیں پتا. جی آپ بتائیں.
بادشاہ نے اپنے پورے محل کا وزٹ کیا تو ایک جگہ جا کے وہ وہیں رک گیا.
کیوں رکا تھا وہ بادشاہ؟
کیونکہ اس نے دیکھا کہ نا اس کے محل کے برابر میں کسی نے جھوپڑی بنائی تھی. تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ جھوپڑی کس نے بنائی ہے. تو لوگوں نے کہا یہ ایک مسلمان خاتون نے وہاں پہ جھوپڑی بنائی ہے جو جس میں اللہ پاک کی عبادت کرتی ہے.
جی بالکل درست جواب دیا آپ نے کہ ایک بادشاہ نے اپنا محل بنایا تھا، وہ وہاں وزٹ کر رہا تھا اس محل کا. تو باہر جب وہ اپنے محل کے نکلا تو وہاں پر اسے ایک چھوٹی سی جھوپڑی نظر آئی تھی، اور وہ جھوپڑی ایک بوڑھی عورت کی تھی جو مسلمان تھی، اور وہ وہاں پر اللہ پاک کی عبادت کیا کرتی تھی. तो जब बादशाह ने ये देखा कि मेरे महल के साथ किसी ने झोपड़ी बना दी है, इससे तो मेरे आलीशान महल की खूबसूरती में, जीनत में कमी आ जाएगी, तो उसे जो है वो इस बात पर बड़ा गुस्सा आया और उसने अपने सिपाहियों से कहा कि जाओ और इस झोपड़ी को गिरा दो। क्या कर दो? झोपड़ी को गिरा दो। तो अब सिपाहियों ने क्या किया, बादशाह का हुक्म था तो उन्हें तो मानना ही था, वो फौरन वो वहां पर पहुंच गए। और जब वो वहां पर पहुंचे तो इत्तेफाक से वहां पर बूढ़ी औरत भी मौजूद नहीं थी, तो उन्होंने मिनटों में जो है वो उस घर को, उस झोपड़ी को गिरा दिया और उसे तोड़ फोड़ कर रख दिया। जब बादशाह ने उस झोपड़ी को गिरवा दिया, उसे तोड़वा दिया, तो वो फौरन जो है वो अपने महल में चला गया और आराम से वहां पर बैठ गया। अब क्या हुआ, अब वो बूढ़ी औरत जब वहां आई और उसने देखा कि मेरे घर को तोड़ दिया गया है, मेरा घर तो गिरा दिया गया है, तो उसे बड़ा गम हुआ। जाहिर सी बात है, किसी की छोटी मोटी चीज़ भी गुम हो जाती है तो उसे टेंशन होती है, उसे परेशानी हो जाती है, उसे गम तो लगता है ना। तो इसका तो घर ही छीन लिया गया था, इसकी तो रहने की जगह ही छीन ली गई थी, तो उस औरत को बड़ा दुख हुआ। क्या हुआ?
दुख
हुआ। और उसने फिर लोगों से पूछना शुरू किया कि मेरा घर किसने तोड़ा, मेरा घर किसने गिराया। तो लोगों ने उसे बताया कि तेरा घर बादशाह ने गिराया है। किसने गिराया है?
बादशाह
ने गिराया है। अब बादशाह किस चीज़ के लिए होता है? लोगों की हिफाजत करने के लिए होता है, लोगों की मदद करने के लिए होता है, उनकी मुश्किलों को, मुसीबतों को आसान करने के लिए होता है, तकलीफ़ देने के लिए तो नहीं होता। लेकिन इस बादशाह ने तो इस बेचारी औरत का घर ही गिरा दिया। तो इस औरत को और ज़्यादा गम लगा कि भाई बादशाह ने मेरा महल तोड़ दिया। अच्छा प्यारे बच्चों, अब उस बूढ़ी औरत ने क्या किया? उस बूढ़ी औरत ने अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज की। किसकी बारगाह में अर्ज की? अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज की। और आपको पता है बच्चों, मजलूम की दुआ अल्लाह पाक की बारगाह में जरूर कबूल होती है। अब वो औरत जो थी वो अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज करने लगी, ए मेरे मौला, जिस वक्त मेरा घर तोड़ा गया उस वक्त मैं वहां पर मौजूद नहीं थी, लेकिन ए मेरे रहम करने वाले, कर्म करने वाले रब, तू तो हर चीज को देखता है, तेरी कुदरत से तो कोई भी चीज बाहर नहीं है, तो जब मेरा घर तोड़ा गया मैं वहां पर मौजूद नहीं थी, लेकिन मौला तू तो हर चीज को देखता है, तेरे होते हुए मेरा घर तोड़ दिया गया। तो जब उस औरत ने ये अर्ज की ना बच्चों, तो पता है क्या हुआ, अल्लाह पाक ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया। किन को हुक्म फरमाया? जिब्रील अलैहिस्सलाम। आपको पता है जिब्रील अलैहिस्सलाम कौन है? किसी को मालूम है?
जी।
हाथ उठाएं, सीधा हाथ उठाया करें, सीधा जी। आप बताएं।
जिब्रील अलैहिस्सलाम सहाबा।
चलें कोई बात नहीं, और कोई बताएगा? आप बताएं।
जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के फरिश्ते हैं।
जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के फरिश्ते हैं। जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया इन्होंने। और इनका काम क्या है ये कौन बताएगा? किसी को नहीं मालूम। चलें आप बताएं।
अल्लाह पाक ने जो नबी भेजे हैं उनको, उनके उनके पास वो वही लाते हैं।
तो जिब्रील अलैहिस्सलाम का काम ये है कि जो अंबिया अलैहिमुस्सलाम गुजर चुके हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके पास अल्लाह पाक का पैगाम लाया करते थे, अल्लाह पाक की वही लाया करते थे। और ये वो फरिश्ते हैं जिनका जिक्र कुरान पाक में भी आया है और अहादीस मुबारका में भी आपका जिक्र मिलता है। तो अल्लाह पाक ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ए जिब्रील, बादशाह का महल जो उसने आलीशान महल बनवाया था उसके बारे में हुक्म दिया कि इस महल को बादशाह और इसके तमाम सिपाहियों समेत हलाक कर दो, इस महल को गिरा दो। तो अब जिब्रील अलैहिस्सलाम तो फरिश्ते थे जी।
हलाक के क्या मायने?
हलाक का क्या मतलब है प्यारे बच्चों? हलाक का मतलब है तबाह करना, बर्बाद करना, ख़त्म कर देना, ये हलाक का मतलब है। तो अल्लाह पाक ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि इस महल को बादशाह और इसके तमाम सिपाहियों के समेत हलाक कर दो। उस महल को तोड़ फोड़ कर रख दिया, मिटा दिया उस महल को, जिस तरह उस बादशाह ने उस बूढ़ी औरत की झोंपड़ी को गिरवाया था। तो प्यारे बच्चों ये था आज का हमारा वाकया। इस वाक्य से अब हमें मैसेज क्या मिला, क्या सीखने को मिला, कोई बताएगा क्या सीखा आपने? जी आप बताएं।
हमें किसी को अपने से कम नहीं समझना चाहिए।
हमें किसी को अपने से कम नहीं समझना चाहिए, बिल्कुल ये मैसेज मिला। और कोई बताएगा? आप बताएं।
हमें किसी की कोई चीज गिरानी भी नहीं चाहिए।
किसी की कोई चीज गिरानी नहीं चाहिए, अच्छा। और कोई बताएगा? जी चले आप बताएं।
और गुरूर नहीं करना चाहिए।
गुरूर नहीं करना चाहिए, जी। और कोई बताएगा? तो प्यारे बच्चों इस वाक्य से हमें ये मैसेज मिला कि हमें किसी को भी अपने से कम नहीं समझना चाहिए, किसी को भी हकीर नहीं समझना चाहिए, बल्कि सबके साथ इक्वल रिलेशन रखना चाहिए। कोई अमीर हो गरीब हो, सबके साथ यकसा ताल्लुकात होने चाहिए। अगर कोई अमीर है तो उसे जो है वो इज़्ज़त देना, कोई गरीब है तो उसकी इज़्ज़त ना करना, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि सबकी इज्जत करनी चाहिए, सबके साथ हमें अच्छा सलूक करना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों
जी।
एक और सबक हमें इस वाक्य से मिला कि हमें किसी पर जुल्म नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए?
जुल्म
नहीं करना चाहिए।
जुल्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि जुल्म का अंजाम, जुल्म का बदला बहुत बुरा मिलता है। जुल्म करने वाले को अल्लाह पाक पसंद नहीं फरमाता, और जो मजलूम होता है जिस पर जुल्म किया जाता है, अल्लाह पाक की बारगाह में उसकी दुआएं भी कबूल हो जाती हैं। अगर हमने किसी को तकलीफ पहुंचाई, किसी को मुसीबत में डाला, किसी को परेशानी में डाला, और उसने हमारे लिए बद्दुआ कर दी, तो और उसकी बद्दुआ कबूल हो गई, फिर हमारा क्या होगा? तो हमें जो है वो किसी पर भी जुल्म नहीं करना चाहिए, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी को तंग नहीं करना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों
जी।
तो जो बातें आज हमने सीखी आपको समझ में आई
जी?
तो प्यारे बच्चों ये थी आज की हमारी कहानी, और हमने इससे मैसेज भी सीखा। इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अगर आप हमारी ये स्टोरी दोबारा सुनना चाहते हैं तो हमारी ये तमाम प्रोग्राम्स हमारे स्क्रीन पर दिए हुए YouTube किड्स मदनी चैनल पर भी अपलोड होते हैं। आप वहां जाकर भी हमारे ये तमाम प्रोग्राम्स देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों इसी के साथ अलविदा लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि
व बरकातुहू। सल्लु अलल हबीब।
सुनो कहानी।